नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था।
शांति, नल्ली दीदी जी का एक हाथ से स्वागत करेंगे, सभी वेलकम करेंगे। बाबा के समय की जी, और जो पीस ऑफ माइंड चैनल पे जो सुबह 4:45 बजे जो बाबा की मुरली चलती सार रूप में, वो नल्ली दीदी उनका सार, मुरली का सार बताते हैं। तो बाबा के समय साकार मामा बाबा की पालना ली हुई दीदी जी आज हमारे सम्मुख हमारा क्लास लेंगे, और आप दिल्ली बॉम्बे घाटकोबर सेंटर जो बाबा ने इनको नियमित वहाँ पर बनाया, सेवा के लिए समर्पित किया वहाँ पर, और बचपन से ही बाबा के बच्चे बने।
62 इयर्स
हो गए ज्ञान में चलते हुए, और 50 समर्पित बॉम्बे 53-54 में बाबा ने घाटकोबर सेंटर दीदी को सेवा के लिए दिया।
वो तो 58
में बॉम्बे में। तो आज दीदी का टॉपिक है, कौन सा टॉपिक था? वारे में वा में भाग्यवान आत्मा, है ना। तो अभी हम क्योंकि बाबा के बच्चे बनते ही क्या हो जाते हैं, वाह वाह हो जाते हैं ना। तो आज हम दीदी से सुनेंगे कि कैसे हमारा भाग्य ऊंचा हो, उसके लिए कैसे हमें पुरुषार्थ को और आगे तीव्र करना है, तो उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे नन्ही दीदी। और जो आज तक हमें 29 तारीख से जो आज हमें भट्टी का जो सारा संभाल रहे थे कुंती दीदी, आज वो हमसे छुट्टी ले रहे हैं कि आज बॉम्बे जा रहे हैं, तो अभी साफ सबसे छुट्टी लेंगे। शांति, कुंती दीदी का बहुत बहुत थैंक्स, काफी अच्छी तरह से सभी भाई बहनों को भरपूर किया, बहुत खुश हुए।
ओम शांति, ओम शांति। आज हमारे भारत देश की और भविष्य की होने वाली राजधानी दिल्ली के सभी भाई बहनों से मिलकर बहुत ही खुशी हो रही है, क्योंकि हम बिन बुलाए कईयों के घरों में जाते हैं। सुबह सुबह मैं सबके घरों में पहुंच जाती हूं, तो ये भी बाबा ने हमारा सौभाग्य बनाया। इसीलिए सर्वप्रथम हम ब्राह्मण बच्चों के, नए जन्म के जीवन दाता मीठे मीठे शिव बाबा और हमारी जन्मदाता ब्रह्मा माँ, तो माता पिता दोनों का हम शुक्रिया मानते हुए, अपने भाग्य को बनाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। चाहे 1 वर्ष वाला ही बाबा का बच्चा क्यों न हो, और 80 साल से चलने वाला भी बाबा का बच्चा क्यों न हो, हम सभी के बाबा ने सौभाग्य जगा दिया, और उसी ही सौभाग्य को अविनाशी बनाने के लिए हम बच्चों ने ईश्वरीय ज्ञान के गुह्य राजों को मुरलियों के द्वारा समझने का रोज रोज अभ्यास करते हैं। उसके साथ साथ राजयोग की शिक्षा जो बाबा ने दी है, जिस राजयोग के बल से हम हमारे जो भी विषय विकार या जो भी किए हुए विकर्म, चाहे इस जन्म के चाहे पिछले जन्मों के, और जो भी प्रकृति से आने वाली कर्म भोगनाएं, उसके साथ साथ व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, प्रकृति, उन सब की तरफ से भी आने वाली दुखद घड़ियां या आपदाएं, इन सभी को हम राजयोग के बल से विजय पाते हुए अपने सौभाग्य की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक भी बड़ा प्यारा ही है, क्योंकि आज के इस टॉपिक के अंदर हमें रूहानी नशा चढ़ता है, क्योंकि रूहानी बाबा मिले हैं, हम रूहों को मिले हैं, रूहानी ज्ञान दे रहे हैं, हम रूहानी देश के निवासी हैं, जहां पर हम सभी रूहें यानी आत्माएं अपने अपने स्वधर्म में स्थित थी, लेकिन इस बेहद की सृष्टि पर पाठ बजाने आई, और पाठ भी हमने कैसा बजाया, वाह वाह का पाठ बजाया। हाँ, याद करें, हम सभी इस धरती पर जब उतरे तो बाबा को भी साक्षात्कार हुआ है हम लोगों का। हाँ, बाबा की हिस्ट्री सुनी होगी आप सभी ने, नहीं तो पढ़ी भी होगी। तो बाबा को जो साक्षात्कार हुए, जो बाबा ने अपना सब कुछ प्रभु को समर्पित किया, तो उसके पहले जो साक्षात्कार हुआ उसमें बाबा ने क्या देखा। पहले तो बाबा में प्रवेशता हुई, और प्रवेशता जैसे ही बाबा में हुई तो एक मधुर आवाज गूंजी, ज्योति स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। तो पहले तो बाबा में प्रवेशता बाबा ने की, और अपना परिचय शॉर्ट में बाबा ने दिया। उसके पश्चात बाबा को जो दृश्य दिखाए गए, उसमें नई दुनिया की स्थापना का कार्य तुझे करना है, तो वो नई दुनिया का नजारा बाबा ने ब्रह्मा बाबा को दिखाया। तो क्या देखा बाबा ने, ऊपर से सितारा नीचे उतरता है, और जैसे ही वो जमीन को टच करता है तो उस सितारे से क्या मूर्ति बन जाती है, चैतन्य, फरिश्ते नहीं लेकिन देवी और देवता, श्री राधे, श्री कृष्ण, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, सभी डबल ताजधारी ऐसे देवी देवताएं बनने लगे, सितारे नीचे उतरने लगे और जमीन पे टच करते हुए वो देवी देवताएं बनने लगे। तो बाबा को बड़ा अजीब लगा, ये जैसे जादू हुआ ना, तो बाबा समझ नहीं पाए ये क्या हो रहा है। बाबा ने कहा, देखो तुझे ऐसी दुनिया बनानी है, हा? बहुत सुंदर स्वर्ग का नजारा और उसके अंदर ये देवी देवताएं, तो तुझे इस कार्य को करना है। अब कैसे करना है, कैसे उसकी शुरुआत होगी, कौन बताएगा विधि, कुछ भी पता नहीं बाबा को। फिर बाबा तो पुरानी दुनिया में थे, तो पुरानी दुनिया का क्या होगा वो भी बाबा ने नजारा दिखाया। तो कैसे प्रकृति के पांचों ही तत्व मिलकर इस पुरानी पतित दुनिया का विनाश करते हैं। कहीं नदियों में बाढ़ आ रही है, कहीं अतिवृष्टि है, कहीं अनावृष्टि है, कहीं धरती फटती है, धरती कंप भूकंप हो रहा है, कहाँ ज्वालामुखी फट रहे हैं, अग्नि लग रही है जंगलों में वनों में, बिल्कुल अग्नि के कारण कई लोग मर रहे हैं, जल रहे हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार समुद्र और नदियां भी उछलकर पूरे के पूरे गांव शहरों को अपने अंदर समा रहे हैं। कहीं देखो तो वायु का प्रपात, साइक्लोन, भिन्न भिन्न नाम के आप लोगों ने तो पेपरों में पढ़ा भी होगा और दृश्य देखे भी होंगे कि कितने प्रकार के साइक्लोन हर जगह पर आए और हर जगह पर आकर के उसने कितने नुकसान कर दिए। तो हवा भी अपना रूप दिखाने लगी, धरती अपना रूप दिखावे, तो हरेक तत्व आप देखेंगे अपना अपना रूप दिखाया। सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन विज्ञान, तभी तो इतना विज्ञान अभी उन्नति को प्राप्त नहीं था, फिर भी बाबा को शिव बाबा ने पहले से दृश्य दिखाए कि कैसे आसमान में अग्नि के गोले आ रहे हैं और वो गोले जब जमीन पे आते हैं तो शहर के शहर उसमें नष्ट हो रहे हैं और लाखों की संख्या में वो गोला जब नीचे पड़ता है तो लोग मर रहे हैं। तो ये जो एटॉमिक वॉर है वो वॉर भी बाबा ने दिखाई। फिर भारत देश के अंदर कैसे विनाश होगा वो भी बाबा ने दिखाया कि कैसे भारत के अंदर आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे और कैसे अपना ही विनाश करेंगे, जो हम लोग देख भी रहे हैं। तो बाबा को पहले ही बाबा ने सारे विनाश के दृश्य दिखाए, जिन दृश्यों को देखकर बाबा भी हतप्रभ हो गए, बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्योंकि इतना रोना चिल्लाना हाहाकार तो बाबा भी देख करके घबरा गए। बाबा ने कहा कि बस करो प्रभु, मैं ये नहीं देख सकता। वर्णन तो आया ही है शास्त्र के अंदर, पहले प्रभु ने अर्जुन ने देखा और अर्जुन ने वर्णन किया, बाद में वो शास्त्र बना। फिर बाबा ने उनको सुंदर स्वर्ग दिखाया, जिस स्वर्ग में जो भी यहां हम बैठे हैं हम सब भी उसमें थे। हाँ, सभी महसूस करो, आप सभी ऊपर से अपने स्टार रूप में नीचे उतर रहे हो और जैसे ही आप जमीन पर आए आप क्या बन गए, सतयुगी शहजादे और शहजादियां, सतयुगी प्रिंस और सतयुगी प्रिंसेस आ गए सभी उस रूप में, अपना सुंदर सजा सजाया डबल ताजधारी देवी देवताओं का पावन स्वरूप, पूज्य स्वरूप देख रहे हो सभी। फिर बाबा ने हमें 84 जन्मों का भी अपने पार्ट दिखाए, कितने जन्म आप सत्ययुग में लेंगे, कितने त्रेता में, कितने द्वापर में, कितने कलयुग में, और अब हम अपने अंतिम 84वें जन्म में कहाँ पर हैं? संगम युग पर। दुनिया कलयुग में है लेकिन हम कलयुग में नहीं, हम संगम पर हैं। और अभी तो हम बाकी भी कलयुग में नहीं, वैसे संगम कलयुग और सतयुग का संगम है, तो हम कलयुग में भी कहला सकते हैं, सतयुग में भी जी सकते हैं और संगम पर भी हैं। परंतु अभी 80 साल हो गए, संगम को मिले हैं 100 साल, तो 80 साल निकल गए माना कलयुग पूरा हो गया। अभी हमारे लिए कलयुग नहीं, हमारे लिए प्योर अभी क्या है, संगम युग है। और इस संगम युग पर हमारे भाग्य की रेखा की शुरुआत होती है, क्योंकि परमपिता परमात्मा शिव बाबा जो मेरा अपना बाबा है, मेरा असली पिता है, मुझ आत्मा का असली पिता, वो धरा पर आता है। और भाग्य देखो हमारा कि ऊंचे ते ऊंचे पाप की मैं प्रैक्टिकल संतान हूं, और फिर मेरा जन्म किस देश में हुआ जो प्रभु की जन्मभूमि है, जो प्रभु की जन्मभूमि वही मेरी जन्मभूमि है भारत देश। और भारत सारे विश्व के सभी देशों में महान और ऊंचे ते ऊंचा देश है, पावन देश है, पवित्र देश है, सारे देशों का वो गुरु है, मार्ग प्रदर्शक है, क्योंकि प्रभु ने इस धरा को पसंद किया, प्रभु ने इस धरा पर अपना दिव्य जन्म लिया। और दिव्य जन्म क्यों कहा? क्योंकि वो गर्भ से जन्म नहीं लेता, प्रवेश करता है। इसलिए शास्त्रों में भी यही वर्णन आया कि वो प्रकृति के अधीन नहीं, हम प्रकृति के अधीन है, हम अपनी मर्जी से अभी अगर हम शरीर छोड़ना चाहें तो क्या हम शरीर छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकेंगे। अच्छा, शरीर छूटने के पश्चात हम अपनी मर्जी से जिस माता पिता को हम पसंद करें, जिस देश को, जाति को, भाषा को, धर्म को हम पसंद करें, हम अपना वहां जन्म ले सकते हैं? अपने आप नहीं ले सकते। लेकिन प्रभु यदि ये करना चाहे तो कर सकता है, वो कर सकता है, तो वो प्रवेश करने के योग्य है। तो जो बाबा की मुरली चलती थी तो वो मुरली क्या थी? ब्रह्मा बाबा भी बोलते थे, शिव बाबा भी बोलते थे, तो बाप दादा दोनों मिलकर के मुरली चलाते थे। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा मुरली सुनाते थे, तो ब्रह्मा बाबा जब मुरली में प्रभु की महिमा करते हैं तो आप एक एक मुरली को ध्यान से पढ़ना, आपको हर मुरली के अंदर ब्रह्मा बाबा के द्वारा प्रभु की अपरम अपार महिमा पढ़ने को सुनने को मिलेगी। और जो महिमा बाबा ने की है वो प्रैक्टिकल अनुभव के आधार पर बाबा ने की है। जैसे हम अनुभव के आधार पर आपको बताते हैं कि प्रभु को भारत भूमि क्यों पसंद आई, क्योंकि इस ही भारत का ये भाग्य था कि स्वर्ग यहाँ ही है, देवी देवताओं की ये भूमि है, और इसलिए प्रभु जब इस सृष्टि पर आए तो या तो ये कहें कि प्रभु के कारण ये धरा भाग्यशाली बनी, या फिर कहें कि हम देवी देवताएं जो बच्चे हैं बाबा के, हमारी आकर्षण में बाबा इधर आए। अब ये दो में से हम क्या सोचना पसंद करेंगे? बाबा हमारे कारण आए, तो सोचने का तरीका यदि हमारा नशे वाला रहेगा ना, तो हमें बार बार ये महसूस होगा कि वाह रे मैं, क्यों मेरे कारण बाबा नीचे आए। हम बच्चों के लिए बाबा नीचे आए, और यही बात राइट है। बाबा भी कहते हैं मैं भी इस अविनाशी बने बनाए ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं, तो वो बंधा हुआ है, तो बंधा हुआ होने के कारण उनको हमारे ही बीच आना है, हमारे लिए ही आना है, और हमें ही आकर के वर्षा देना है। बाबा कहते हैं ना, वर्षा मैं किसको देता हूं? जो ब्राह्मण बनते हैं बच्चे, वर्षा उन्हों को ही मिलता है, सभी को नहीं मिलता। इसीलिए बाहर में, क्योंकि मुझे ही वर्षा मिलता है, हम ब्राह्मणों को ही मिलता है। ज्ञान भी किसको सुनने को मिलता है? डायरेक्ट प्रभु का हमें ही मिलता है। राजयोग डायरेक्ट किसको सिखाया गया? हम बच्चों को। दिव्य गुणों की धारणा करा के 21 जन्मों का दैवी दुनिया का वर्षा भी किसको मिलता है? हमें ही मिलता है। स्वर्ग किसके लिए बाबा बना रहे हैं? हम बच्चों के लिए। इन विषय विकारों के ऊपर विजयी कौन बनता है? हम बच्चे ही बनते हैं। बचपन में छोटे होते हैं ना, तो हम बच्चों को एक बोलते जाते हैं टीचर शिक्षक कि हम इस भारत देश के बच्चे कौन हैं? तो बच्चे कहते थे हम बच्चे, हाथ उठा करके बोलते थे, नशे में बोलते। तो आज आप लोगों को भी नशा चढ़ाना है, क्योंकि अभी बजा है 10:45, राइट? 11:05 है। आप लोग सभी अमृत वेले भी उठे होंगे, और अमृत वेले उठ करके सभी ने अमृत वेले योग किया, फिर क्लास किया, क्लास के बाद सभी ने फ्रेश भी होते रहे, नाश्ता भी किया, फिर नाश्ता करके आप लोग बहुत जल्दी आके यहाँ बैठे। कितने बजे बैठे? 10 आकर के बैठे। तो 10 आप यहाँ आके बैठे, नाश्ता करके बैठे, तो फिजिकली क्या होता है, थोड़ा हेवी हो जाते हैं, है ना? थोड़ा भारी हो जाते हैं। तो जब भारी हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, चाल पुरुषार्थ की भी धीमी हो जाती है। हमारी चाल भी जो है ना, वो जो हम चुस्ती से चलते हैं ना, थोड़ी धीमी पड़ जाती है। तो यहाँ भी जब हम आके बैठते हैं, ये तो है ही हमारा विश्राम घर, रिफ्रेश होने का स्थान, और उसमें भी हमें सोफा मिलते, कुर्सियां मिलती, हा? तो बड़ा आनंद आता है और अच्छा सिर भी टिका सकते हैं। तो अच्छी तरह शांति धाम में हम अपने विश्राम धाम में पहुंचने के यात्री बन जाते हैं। हाँ, वो यात्रा हमको खींचती है, जल्दी चलो ऊपर, जल्दी चलो। तो हम यहाँ पर बहुत अच्छे विश्राम भी करते हैं। पीछे वाले मेरे भाई बहने सुन रहे हो, स्कूल कॉलेज में क्या होता था कि कई बच्चे होते हैं ना स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट, वो जानबूझ के पीछे की सीट पर जाके बैठते हैं, वही पसंद करते हैं। आप लोगों के लिए मैं नहीं कह रही हूँ लेकिन जानबूझ के क्यों पसंद करते, क्योंकि पीछे बैठेंगे थोड़ा टीचर का ध्यान कम रहेगा, आगे बैठेंगे तो टीचर का ध्यान उनके ऊपर बार बार पड़ता रहता है। लेकिन बाबा की स्कूल में ऐसा नहीं, बाबा की कॉलेज में ऐसा नहीं, बाबा की यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है। बाबा भी जब आते हैं ना तो बाबा का ध्यान कहाँ जाता है, एकदम पीछे जाता है। फिर बाबा कहते हैं मैं सबको मेरे सन्मुख देख रहा हूँ, तो हम भी फॉलो करते हैं, तो हम भी पीछे वालों को आगे देखते हैं। तो इसीलिए पीछे वाले भी ऐसा ना समझे कि हम भी अगर यदि थोड़ा झुटका खा लेंगे, ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया या ऐसा किया तो पता नहीं चलेगा। आपको पता है बाबा के घर में सब गुप्त बातें होती है, ज्ञान गुप्त, हम लोगों का जीवन गुप्त, जन्म गुप्त, हमारी धारणाएं गुप्त। हमें कोई पहचानेगा कोई कि इनको भगवान मिला है? ये ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण सो फरिश्ते घूम रहे हैं दुनिया में, कोई जानेगा? हमको नहीं जानेंगे। तो यहाँ पर भी हम गुप्त रीति से कैसे पहचान लेते हैं कि अभी थोड़ा थोड़ा नींद आ रही है, झुटका खा रहे हैं। वैसे तो नींद की प्रत्यक्ष निशानी क्या है, शुरुआत कैसे होती है? उबासी से। तो मैं सभी को कहती हूँ जब क्लास कराने जाती हूँ कि मैं आई हूँ क्लास कराने, आपको खुशियां देने, नशा चढ़ाने, या क्लास को शेयर करने, जो अनुभव है वो आपसे शेयर करने आई हूँ। परंतु मुझे एक तकलीफ है और वो तकलीफ में आप लोगों को मुझे सहयोग देना होगा। और वो तकलीफ कौन सी है? उबासी। आपकी उबासी में मुझे क्या तकलीफ होगी? लेकिन शास्त्रों में है, खाता था भीम, जाना पड़ता था शकुनी मामा को। पता है आपको? ऐसा मैंने हंसी में सुना है, कहां तक राइट रॉन्ग मुझे पता नहीं, लेकिन हम भी हंसी की कुछ बातें करेंगे आपस में। तो थोड़ा नींद का नशा भाग जावे यहां से, आवे ही नहीं यहाँ पर। तो जब आप लोग कोई उबासी खाते हो, जुटका खाते हो, या थोड़ा इधर उधर आपकी एकाग्रता टूटती है, तो क्या होता है पता है? मेरा लिंक बदल जाता है, मेरे को पॉइंट भूल जाती है कि मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ। तो मैं खुद ही हैरान हो जाती हूँ कि अरे मैं क्या बता रही थी। तो मुझे अंदर में पक्का हो जाता है कि कहीं ना कहीं माया चुपके से आकर के मुझे डिस्टर्ब करना चाहती है। तो इसीलिए आप लोगों को सहयोग देना होगा। अगर मेरा भूल से भी ध्यान गया ना, तो मेरी पॉइंट निकल के उसके मुंह में घुस जाती है। इसीलिए आप ऐसा नहीं करना, आपकी आंखों में घुसे, आपकी कानों में जावे। कान खुले रखो, आंखें खुली रखो, बुद्धि को तेज रखो, तो कुछ मजा भी आवे ना, तो इसीलिए चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मेरे ख्याल से काफी अलर्ट हो गए होंगे, फिर भी कोई को होता है रात को नींद नहीं आई, थके हुए होते हैं तो थोड़ा कभी भारीपन हो जाता है, नींद आती भी है, कोई आती है उसमें हर्जा नहीं, लेकिन आजू बाजू जो बैठे हैं ना, थोड़ा एक दो को भी मदद करो, थोड़ा अलर्ट करो उनको। हाँ, तो मैं बताने क्या जा रही थी, देखा आपको याद कराना पड़ेगा, कहाँ छोड़ा अपन। अरे मैं तो टॉपिक है, स्वर्ग से हम नीचे उतरे, अभी हमारा संगम युग चल रहा है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सब पास किया, संगम पर बाबा आए, बाबा ने भी भारत भूमि को पसंद किया, हमें पसंद किया, हम बच्चे कितने भाग्यशाली, कितने लक्की कि हमारे लिए बाबा आए, राइट। तो बाबा ने हमें कितना ऊंचा भाग्य दिया कि हम अगर हर वक्त यही बात याद रखें कि मैं कौन और मैं किसका, तो मैं कौन हूँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ, ऐसे नहीं मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ से इतना नशा नहीं चढ़ेगा, क्योंकि अभी ये हमारा जैसे रटा रटाया हो गया। योग में भी बैठते हैं ना कई, तो मैं आत्मा हूँ करके ऐसे बैठेंगे तो आत्मा नहीं बनते हैं, आत्म स्वरूप में नहीं आते हैं, उस स्वरूप में टिकने के लिए बहुत सारा अभ्यास करना पड़ता है, हमें महसूस करना पड़ता है। क्या महसूस करना पड़ता है, डबल काम करने पड़ते हैं, एक तरफ भुलाना और दूसरी तरफ याद करना, दोनों विरोधाभासी बातें, भूलना और याद करना। तो इसीलिए गड़बड़ क्या होती है, जहाँ भूलना है वो याद आने लगता है, और जहाँ याद करना है वो हमें भूल जाता है, और हमारी शिकायत हमारा योग नहीं लगता है, हम योग में बैठते हमें अनुभव नहीं होता, इनको अनुभव हुआ, इनको अनुभव, इनको अनुभव, मुझे क्यों अनुभव नहीं होता, क्योंकि चेकिंग नहीं, सावधानी नहीं, अलर्ट नहीं, तो अनुभव कहाँ से होगा। तो इसीलिए हमें इस डबल कार्य को बाखूबी निभाना है, स्वस्वरूप को महसूस करना है, तो पूरा इस देह को भुलाना पड़ता है। इस देह को भुलाना माना कलयुगी जन्म जीवन पूरा भुलाना पड़ता है। इतना मुझे स्वाभाविक रूप से मेरा संगम युग, मेरी जन्मभूमि, मेरा माँ और पिता कौन, ब्रह्मा, ब्रह्मा शब्द में माँ है, तो ब्रह्मा माँ और शिव पिता, कितनी विचित्र बातें बाबा बताते हैं कि पुरुषतन है ब्रह्मा बाबा, लेकिन वो हमारी असली ब्राह्मणों की सच्ची माँ है। शिव बाबा भी कहते हैं ये मेरी वनी है, माना पत्नी है, तो पत्नी और पति, माता और पिता दोनों चाहिए तब बच्चे, तो ब्रह्मा माँ और शिव पिता दोनों ने मिलकर मुझे जन्म दिया, तो हमारा जन्म पवित्र है। शिव बाबा ने ब्रह्मा को एडॉप्ट किया और दोनों ने मिलकर के हम बच्चों को एडॉप्ट किया, इसीलिए वाहरे मैं, क्योंकि मेरा जन्म भी दिव्य और अलौकिक, शिव बाबा का जन्म जैसे दिव्य अलौकिक, ऐसे मेरा भी जन्म दिव्य और अलौकिक है। तो हम कई बातों में बाप समान हैं, दोनों बाप के समान हैं हम। तो मुरली जब पढ़ते हो ना, तो ऐसी बातें नोट करो, कि हम कहाँ कहाँ बाप समान हैं। बाबा कहते मैं भी ज्योति बिंदु हूँ और तुम बच्चे भी क्या हो, ज्योति बिंदु हो। बाबा कहते मैं संगम पर आता हूँ तो हम बच्चे भी कहाँ बाबा को मिले, संगम पर ही मिले। बाबा भी हमें संगम पर मिले, हम भी बाबा को संगम पर मिले। तो ऐसी ऐसी बातें हम सारी नोट करें अपने भाग्य की। वाहरे मैं का जो मेरा भाग्य है, वो भाग्य की मैं लिस्ट तैयार करूं। आप करना, आपको बड़ा मजा आएगा। मुरली पढ़ने में भी मजा आएगा, पढ़ते पढ़ते आपको रूहानी नशा चढ़ेगा। आप पढ़ते पढ़ते आपके चेहरे पर हर्षित मुखता इतनी बढ़ती जाएगी कि आपके परिवार वाले कहेंगे ऐसा क्या बाबा की मुरली में आया जो आपका चेहरा ही चमक गया। ऐसे ही वाह मेरा बाबा, उसके लिए तो कहने की आवश्यकता ही नहीं। उसके लिए हमें बहुत मुरली में पॉइंट्स ढूंढने की जरूरत नहीं। लेकिन हमारे अनुभव में जो बातें आई बाबा की, बाबा के गुणों की, बाबा की विशेषताओं की, और जो बाबा का और मेरा स्नेह है आपस में, संबंध है आपस में, और उस स्नेह पूर्ण संबंध के साथ जो बाबा ने मेरे लिए महावाक्य उच्चारण किए, उन महावाक्यों को अलग से नोट करो। जैसे बाबा कहते हैं ना, मुझ निराकार को आपके कारण साकार में साकार रूप धरना पड़ा। किसके लिए? आप बच्चों के लिए। तो निराकार बाबा साकार में आते हैं, तो ये बाबा का प्रेम मेरे लिए नशे की बात, लेकिन इसमें बाबा के प्रेम का सागर छलकता है कि उसने अपना रूप बदल दिया। वो कहते ना, भक्ति में गाते थे, ना जाने किस वेश में मिल जाए भगवान रे। तो प्रश्न उठता था कि अगर हमको भगवान मिल जाएगा कभी, तो हम कैसे पहचानेंगे उसको। तो बाबा ने बहुत अच्छी हमें पहचान दे दी। क्या पहचान दी? कैसे प्रभु को हम पहचानते हैं? जो कोई दुनिया में न कर सके, जो दुनिया में कोई न कर सका, वो बाबा ने हमें करके दिखाया। क्या करके दिखाया? आपको कभी कल्पना थी कि भगवान आपको मिलेंगे? थी कोई को भी कल्पना? कोई को भी कल्पना नहीं थी। कितनी भक्ति की होगी, कितने तीर्थ स्थान, शास्त्र, सत्संग, गुरु, गुसाई, साधु, संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, साधना, भक्ति, तप, व्रत, जप, क्या क्या नहीं किया होगा, कितनी यात्राएं की होंगी। लेकिन प्रभु मिला? नहीं मिला। तो अभी हमें प्रभु मिला, उसकी निशानी, बाबा ने हमें अपना बनाया। दुनिया में कितनी आत्माएं हैं? 550 करोड़ से ऊपर आत्माएं हैं, 750 करोड़। देखो उसमें से कितनों को बाबा ने अपना बनाया, जिन उनकी भेंट में हम कितने बच्चे हैं? 5 पांडव। तो बाबा की तो वाह वाह हम क्या करें। हमें कल्पना थी कि हम पतित से पावन बनेंगे और हम विषय विकारों पर विजय प्राप्त करेंगे, जिनके लिए ऋषि मुनियों ने, शास्त्रों ने भी कह दिया कि युगल रूप में आग और कपूस कभी पवित्र नहीं रह सकते, ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर सकते। लेकिन बाबा के बच्चों ने वो भी करके दिखाया। युगलों की भट्टी चल रही है ना नीचे, तो हम कितने विजयी बनते जाते हैं हर बात में। और आप लोग तो चलते फिरते अनुभव भी सुनाते हो कि बाबा ने मुझे यहाँ मदद की, मुझे ये यहाँ सहयोग दिया, मुझे ये बाबा का साक्षात्कार हुआ, मुझे यहाँ बाबा दिखा, मुझे वहाँ बाबा दिखा। करते हैं ना अनुभव हम सभी, कितनी छोटी छोटी बातों में भी बाबा मदद करते, बड़ी बड़ी बातों में भी मदद करते। मदद की तो बात ही मत पूछो, अभी मैं वो बातें नहीं बताती हूँ क्योंकि आपको मुझे और भी अच्छी अच्छी बातें बाबा की बतानी है। तो वारे मैं, वारे मेरा बाबा, तो वो भी पॉइंट्स नोट करो कि मैं वारे मेरा बाबा कब कहती हूँ, कहता हूँ जब जब शुक्रिया किया बाबा को, थैंक्स दी बाबा को, जब जब हृदय ने कहा कि ये तो बाबा ने ही किया, बाकी मेरे वश की ये बात नहीं थी, ये कोई नहीं कर सकता, ये तो बाबा ने ही किया, तो वो है वाह रे मेरा बाबा। फिर वाह मेरा भाग्य, आज हम सभी यहाँ पर पहुंचे हैं, किसके निमंत्रण पर पहुंचे? बाबा और मधुबन के निमंत्रण पर। ये भाग्य दुनिया में किसी को मिलता है? हमें भगवान मिला, ये भाग्य। दुनिया में आज इतने लोग अलग अलग धर्म के अलग अलग साधना करते, योग करते, भक्ति करते, प्रभु को पाने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको मिला भगवान, उनका भाग्य बना? नहीं बना। और वो भी एक जन्म का भाग्य नहीं, बाबा हमारा भाग्य कितने जन्मों के लिए बनाते? 21 नहीं, 3/4 हमारे जन्मों का, 3/4 या कल्प का, 3/4 पौना समय हम अपने भाग्य को खाते हैं। मैं तो कहती हूँ अंतिम जन्म तक खाते हैं। ये प्रभु से हमारा मिलना, ये भी तो हमारे कर्मों का ही तो फल है। इसका मतलब क्या हुआ? हम 84 ही जन्म तक हमारे भाग्य को खाते हैं। तो मेरा ये भाग्य कितना ऊंचा, ऊंचे से ऊंचा बाप मिला, ऊंचे से ऊंचे गुण धारण कर रहे हैं, ऊंचे से ऊंची विशेषताएं मेरे में बाबा भर रहे हैं, ऊंचे से ऊंचे मधुबन, ऊंचे से ऊंचा भारत देश, हर बात हमारी ऊंचे से ऊंची है। मैं ब्राह्मण भी विराट रूप के अंदर सबसे ऊंचे से ऊंचा, बाबा कहते हैं ना चोटी, ब्राह्मणों की चोटी, सबसे हाईएस्ट स्थान पर हम ब्राह्मणों को दिखाया है। तो सबसे ऊंचे से ऊंचे हम, तो हमारा भाग्य भी कैसा है, ऊंचे से ऊंचा। तो इसीलिए हम ऊंचे से ऊंची रॉयल्टी भी सीखते हैं, क्योंकि बाबा हमें अपने परिवार का बनाया। आज हमारा परिवार कितना है? हम ब्राह्मणों का परिवार में सदस्य कितने? लाखों हैं। जहां जाओ अपना परिवार, हम गुजरात में जाएंगे अपने सेवा केंद्र की दीदी को बोलेंगे, दीदी गुजरात में मुझे 8 दिन रहना पड़ेगा, फिर मैं वहां मेरी अन्न की परेश, 3-4 दिन तो कैसे भी मैं जो भी सूखा वगैरह ले जाऊंगा, खा लूंगा, करूंगा, लेकिन कुछ हो सकता है, सुविधा हो जाती है। पंजाब चले जाओ, नेपाल चले जाओ, जहां भी जाओ बाबा का घर है ही है। हम आत्मा हमारी भूखी नहीं रहती, हर जगह हमें अपने बाबा की मुरली मिल जाती, हर जगह हमारे ब्राह्मण बच्चे मिल जाते बाबा के, हमारे परिवार का कोई न कोई सदस्य हमें मिल जाते। यहाँ तक कि विदेश में, जब विदेश में जाते हैं ना, तो कई स्थान ऐसे हैं जहाँ सेंटर नहीं है, घरों में क्लास चलती है, लेकिन रास्ते में अगर कोई बैज वाला दिख गया ना, भले रंगीन कपड़ों में हो, हम अंदर से एकदम जैसे कोई हमको कोहिनूर हीरा मिल गया। आप ब्रह्मा को मारो, आप बाबा के सेंटर पर जाते हो, कितनी खुशी हो जाती है हमें अंदर, क्योंकि सब अपरिचितों में वो एक परिचित मेरा अपना मिला। गाड़ियां जाती है ना, मैं देखती हूँ गाड़ियों के पीछे या आगे शिव बाबा का सिंबल होता है, तो देख करके अपने भाई बहन बहने सेंटर की भी उछल पड़ती है, देखो अपनी गाड़ी जा रही है, अपनी गाड़ी जा रही है, या तो बोलेंगी बाबा की गाड़ी जा रही है, बाबा की गाड़ी जा रही है। मुझे तो इतनी उत्सुकता हो जाती है, मैं कहती हूँ जरा बाजू में से लो कौन है उसके अंदर, क्योंकि कई बार ऐसे होता है पहचान वाली अपने परिचय के हो जाते हैं ना, भले पहचान सबसे है लेकिन परिचय के होते हैं ना, तो हाय हेलो कर लेते हैं, उधर कारों को खड़ी कर देते हैं, हाय हेलो करते टोली की लेन देन कर लेते, कभी चलती गाड़ी से भी टोली की लेन देन कर लेते, बड़ा आनंद आता है। क्यों? ये यादगार बनता है हमारी हर एक्टिविटी, हमारा जन्म, हमारा जीवन, हमारे जीवन के गुजरने वाले बाबा की यादों में ईश्वरीय परिवार के साथ हमारे भाग्य को लेकर के जो भी पल हमारे गुजरते हैं ना, वो हमारे लिए यादगार बनते हैं। ये हमारा ही भाग्य है, सभी के ऐसे यादगार नहीं बनते, हमारी हर बात यादगार बन जाती है, क्योंकि जो सच्ची याद सिखलाने वाला, जिसकी याद से ही विकर्म विनाश होते हैं, जो ही हमें पतित से पावन बना सकते, जो ही इस नरक बनी हुई सृष्टि को पावन सृष्टि बना सकते, वो स्वयं परमपिता परमात्मा के, ईश्वर के, हम ईश्वरीय कुल के बच्चे हैं, हमारा कुल बहुत ऊंचे से ऊंचा है, नामी ग्रामी कुल है, हमारे कुल की पूजा होती है, हम सभी सर्व धर्म की जाति भाषा बोलने वालों के पूर्वज हैं, ये सब हमारे भाग्य की बातें हैं। और ये भाग्य हमारा किसने लिखा? भाग्य विधाता ने लिखा ब्रह्मा के द्वारा। तो ये सारी ऐसी ऐसी बातें हैं ना, खुशी की बातें जितनी भी मुरली में अपने को महसूस होती है ना, नोट करने की। फिर बाबा कहते कभी उदासी आती है, कभी कोई बात से डिस्टर्ब हो जाते हैं, कोई बात से मूड खराब हो जाती है, कहीं कोई फीलिंग आ गई, तो उस समय क्या करो? ये अपना भाग्य लेके बैठ जाओ, पढ़ो उसको, सेकंड में चेंज आ जाएगी, क्योंकि हमारे भाग्य की बातें इतनी ऊंची ऊंची हैं कि हमें लगेगा हम बहुत चीप हो गए, फीलिंग में आके, मूड आउट करके, डिस्टर्ब माइंड करके, क्रोध करके, क्रोध में, जोश में, गुस्सा में कुछ भी बोल के, जो भी लोभ वृत्ति में आके, लालच में आके, मोह में आके, जिस भी विषय विकार के वशीभूत होकर, मैं किया या मेरा किया, जहां मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, अपेक्षा मेरी पूर्ण नहीं हुई, या मुझे जो चाहिए वो मुझे नहीं मिला, तो माइंड हमारा टोटली डिस्टर्ब हो जाता है। छोटी छोटी आशाएं होती है हमारी, कभी बड़ी बात हमको दुखी नहीं करती, जितना छोटी बात कभी पूरी नहीं होती तो दुखी हो जाते। अहम, ऐसी छोटी छोटी बातों में हमें बहुत दुखी करता है अहंकार, जो है ना ईगो, वो छोटी छोटी बातों में दुखी करता है। कैसे? अभी मैं इनको मुस्कुराते हुए ओम शांति करती हूँ, लेकिन इसके दिल में मेरे प्रति कभी कोई मेरे दुर्व्यवहार की बात याद है उसको, तो वो मुझे हंस के ओम शांति नहीं करती, तो मुझे अंदर में दुख हो जाता है। खास करके सेवा केंद्र पर आते हैं ना, आप मेरे को कहेंगे ओम शांति, मैं व्यस्त हूँ, बिजी हूँ, मैंने देखते हुए नहीं देखा आपको, और मैंने आपको ओम शांति का जवाब भी नहीं दिया, मैं चली गई सीधा, जैसे आपको देखा ही नहीं, तो आपको अंदर में क्या होगा, फील होगा कि नहीं? हम गए, दीदी ने देखा भी नहीं हमको, ओम शांति भी नहीं किया, ओम शांति किया मैंने, दीदी ने किया ही नहीं। और ड्रामानुसार ऐसा होता है कि हम दोबारा ओम शांति करते जब वो गुजरती है, तो ड्रामानुसार तब भी नहीं होता, तो बात पक्की हो जाती है अंदर, तो कितने व्यर्थ संकल्प चलने शुरू हो जाते, दीदी मेरे से नाराज है, पता नहीं मेरे से क्या भूल हो गई, क्यों ओम शांति नहीं करती, रोज तो करती है, आज पता नहीं क्या हुआ, शायद मैंने ये किया था तभी इस बात से नाराज होगी, शायद उस बात से नाराज होगी, शायद फलानी ने फलानी बात कही होगी मेरी, इसीलिए नाराज होगी, कितने संकल्प चल जाते हैं व्यर्थ। तो छोटी छोटी बातें अहंकार जो है ना वो फील कराता है, तो हमको तो उसमें से बाहर निकलना है। तो बाहर निकलने का सहज तरीका, बाबा कहते हैं कोई करे न करे, आप करो, क्यों? आप दाता के बच्चे हो, आप लेवता नहीं हो न लेवता के बच्चे हो। ये भी अपेक्षा हुई ना कि मैं ओम शांति बोलूं और वो मुझे भी ओम शांति करे, माना मुझे रिस्पेक्ट दे, मुझे एक रिस्पेक्ट मिले, मुझे प्रत्युत्तर मिले। तो हमको एक ही धारणा पक्की करनी है, मैं मुस्कुराऊं, वो मुस्कुराए न मुस्कुराए। कोई कहते कि हम दीवारों से बात करें, दीवारों से मुस्कुराएं, हाँ दीवारों को भी कान होते हैं, कहते हैं ना, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, तो होते हैं क्या कान दीवारों को, फिर भी क्या करते लोग, धीरे से बात करते कान में, दीवारें सुने ना। तो ऐसे ही हम भी पत्थरों से, बाबा ने काम लिया है, हम कौन थे, पत्थर बुद्धि थे, तो हम पत्थर बुद्धियों को बाबा ने क्या बनाया, पारस बुद्धि, और हम रास्ते के बीच में पत्थर पड़े थे, हमें बाबा ने उठा लिया, और हमारी क्या बनाता है बाबा, मूर्ति बनाता है, और कितनी सुंदर मूर्ति, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, और मंदिर में देवी देवता और इष्ट देव के रूप में उसको स्थान प्राप्त होता है। इसीलिए कभी ये नहीं सोचना कि क्या हम पत्थर से बात करते हैं। कई बार ऐसे होता है, कईयों का ऐसा सुनने का तरीका होता है, हम बात करते रहेंगे, वो अपना ही काम करते रहेंगे, हमें देखेंगे भी नहीं, हूँ हूँ करते जाएंगे, कोई कोई तो हूँ हूँ भी नहीं करेंगे, तो कहेंगे ध्यान खींचवाएंगे हम आपसे बात कर रहे हैं, दीवार से नहीं बात कर रहे हैं, तो भी वो अपने काम में रहेंगे, तब भी डिस्टर्ब नहीं होने का, क्योंकि पत्थर वो है, आप नहीं हो, वो पत्थर है, आप नहीं हो। अगर उसने किया आपको अच्छा नहीं लगता, राइट, फिर हम भी अगर ऐसा व्यवहार करेंगे तो उनको भी कैसे अच्छा लगेगा। तो इसीलिए हम यही सोचें, मुझे अच्छा करना है, क्यों, क्योंकि मैं बाबा का बच्चा बच्ची हूँ, मुझे बाबा ने क्या सिखाया, ठीक है, अच्छा नहीं लगा, दोबारा बात नहीं करो आप उनसे वो बात, अभी आप रह भी नहीं सकते हो, उनको कहे भी घर भी नहीं चलता है, आपको रहना भी है कहना भी है पर सहना भी नहीं है, तो ये सोचे हमारी सहन शक्ति इनके द्वारा बढ़ रही है। तो बाबा ने हमें क्या सिखलाया, नकारात्मकता को सकारात्मकता में ले जाओ, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देना, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साथ होता है ना तो फायदा बहुत होता है। क्या फायदा होता है, ये आपके तरफ आवाज पहुंचती है इसके जरिए, ये रोशनी है, कभी है वायर के अंदर क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है। तो हमारे जीवन के अंदर भी नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, लेकिन उन दोनों को जोड़ लेना, माना एक तार बना देना, नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेना, तब वो क्या करेगा, रोशनी देगा, वो हमारे मनोवांछित कर्म करेगा। लेकिन हम नेगेटिव बना देंगे उसको तो ठीक नहीं होगा, इसलिए बाबा ने महामंत्र दे दिया, जो हुआ उसमें कल्याण, जो हो गया उसमें भी कल्याण, जो हो रहा है उसमें और कल्याण, और आगे जो होगा उसमें उससे भी बढ़कर कल्याण, और अगर समझो कल्याण नहीं हुआ तो क्या सोचेंगे, तो जो उसको अच्छा लगा उसने वो किया, मेरी इच्छा के मुजब नहीं हुआ ना तो उसकी इच्छा के मुजब हुआ, तो उसकी इच्छा के मुजब जो हुआ उसमें तो है ही कल्याण ही कल्याण, क्योंकि वो तो अकल्याण कर ही नहीं सकते, वो कल्याणकारी बाबा है। तो बाबा ने हमारे लिए कितना सरल रास्ता बना दिया है, बस बाबा कहते सरल योग है, सहज योग है, कर्म योग है, स्नेह योग है, शांति योग है, सुखपूर्ण योग है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराने वाला योग है, तो वो योग करो, मस्त रहो, जब आनंद में सब एक दो से पॉजिटिव बातें करते हो, खुश होते हो, खुशियां बांटते हो, एक दो से खुशी लेते हो देते हो, आप खुशी का योग कर रहे हो, तो जिस भी गुण को लेकर आप आदान प्रदान करते हो आप बाबा के योगी बच्चे हो, सर्विसेबल बच्चे हो उस समय। लेकिन जब ये याद और सेवा का बैलेंस टूटता है, याद और धारणा का बैलेंस टूटता है, याद और ज्ञान का बैलेंस टूटता है, चार सब्जेक्ट है ना अपनी, ईश्वरीय ज्ञान, दिव्य गुणों की धारणा, सहज राजयोग और सत्संग, तो हमको इन सभी चारों ही सब्जेक्ट का बैलेंस किसके साथ करना है? बाबा के साथ, बाबा की याद के साथ, बाबा की महिमा के साथ। तो हमको उसी रीति से अपने सोचने का तरीका बदलना है, और फिर वो ऐसे ही एक बार में नहीं बदल जाता है, बार बार करना पड़े। कई बार कईयों का क्या होता है, कोई एक ऐसी हमें पसंद ना आवे ऐसी एक्टिविटी मन वचन या कर्म की कोई करता है और हमें बार बार उसको बताना पड़ता है, तो आखिर हम भी थक जाते हैं। हम कहते रोज 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 उसको बताना, तो हमें थकना नहीं है, क्योंकि बाबा भी आज हमारे ऊपर अथक मेहनत करता है। हम बच्चे धारणा करें या न करें, बाबा ने पढ़ाई एक भी दिन नहीं कराई हो, ऐसा कभी हुआ है? उसके लिए एक रमणीक कहानी सुनाती हूँ, थोड़ा फिर से बीच में फ्रेश हो जाओ आप लोग। वो कहानी है वंस मोर की कहानी। एक गायक था मेरे जैसा, गीत गाया उसने, कोई सभा में संगीत का कार्यक्रम चल रहा था तो उसको भी ऑफर की गई, तुम भी गाओ, तुम गा सकते हो। तो हमने स्वीकार कर लिया, भले हम गाते हैं। गीत गाया उसने, हालांकि वो कैसा गायक था क्या था वो जानता नहीं था, शायद स्वयं भी नहीं जानता था, दूसरों ने भी शायद उसको बताया नहीं था। गीत तो उसने गा लिया। जब गीत गाया तो लोगों ने कहा, हमारे पीछे से भाई बहनों ने कहा, वाह दीदी वाह, क्या गीत गाया, वंस मोर वंस मोर। हम तो खुश हो गए, हवा भर गई हमारे में, हम तो फूले नहीं समाए कि वाह वंस मोर मिली मेरे को। मैंने खुशी में फिर से गीत गाया, फिर बीच में से आवाज आई, वंस मोर वंस मोर। मेरे में और हवा भर गई, बलून और फूल गया। फिर मैंने कहा कि मेरे पास और भी अच्छे गीत हैं, दो बार तो मैं गा चुकी ये गीत, मैं कोई नया गीत आपको सुनाऊं। तो हमारे यहाँ बैठे हुए भाई बहनों ने कहा, नहीं नहीं आप यही गीत गाइए, वंस मोर आपको इसके लिए है। तो कहा ठीक है, तीसरी बार भी गा लिया। फिर हमारे आगे बैठे हुए एकदम उछले, वंस मोर वंस मोर वंस मोर। फिर सोच चला मेरे को, वहां भी कहते वंस मोर, बीच में भी कहते वंस मोर, ये भी कहते वंस मोर, ये भी कहते वंस मोर। तो मैंने कहा, मैं अर्ज करती हूँ कि अभी बार बार वही गीत मत गवाइए, मैं आपको नया गीत सुनाती हूँ, तो क्या हुआ होगा? सभी में से सभी की तरफ से एक उठा और उस व्यक्ति ने कहा, जब तक आप ये गीत बराबर नहीं गाओगे तब तक आपको वंस मोर हम कहते रहेंगे। तो बाबा भी हमारा अभी गंभीरता से सुनने वाली बात है, बाबा भी हम बच्चों को रोज रोज कई मुरली पढ़ते ना साकार बाबा की, तो उनको ऐसे लगता है कि क्या बाबा वही तो बात बताते रोज, पवित्र बनो योगी बनो यानी कि परहेज करो रोज मुरली पढ़ो यही तो अमृत वेले उठो यही बात रोज 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 वही सदर्शन चक्रधारी बनो 84 जन्म का चक्र घुमाओ देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण बाजोली खेलते रहो। तो हम बच्चे बोर होने लगते हैं मुरली से, ये प्रैक्टिकल बताती हूँ मैं आपको कि वही की वही मुरली है, वही बात आती है रोज। तो बाबा हमको कहता है वंस मोर, बार बार बाबा हमको वंस मोर करके हमको कहता, नहीं पढ़ो मुरली, पढ़ो मुरली पढ़ो, रोज कहता है अमृत वेले उठो, रोज कहता है मुरली पढ़ो। क्यों कहता है? जब तक तुम भी फरिश्ता सो देवता नहीं बनोगे, तब तक मैं भी ये ज्ञान का गीत तुम्हें सुनाता ही रहूंगा। मैं अपनी मुरली चलाता ही रहूंगा, तो सुनना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि देवता हमको बनना है, फरिश्ता हमको बनना है, तो हमको बाबा से सुनना है। तो इसीलिए बच्चे क्या करते हैं, बाबा को याद करने की, खुशी में रहने की अनेक भिन्न भिन्न तरकीबें निकालते हैं। तो कुछ आपको मैं तरकीबें इसलिए सुनाना चाहती हूँ, समय तो हो गया, लास्ट बात बताती हूँ आप लोगों को। आपको एक अच्छी बात सुना देती हूँ, आप याद करेंगे, यादगार तो बनाना है ना मेरे को भी, नहीं तो आप बाबा को इतना याद करेंगे मुझे याद ही नहीं करेंगे। तो ये भी नाम की लालच है ना, मेरे मुझे याद करो, ये भी एक लालच रॉयल रूप की माया है। माया की बात नहीं, लेकिन आपको मुझे रिफ्रेश करने के लिए बताती हूँ। हमारी माताएं, हमारे भाई आते हैं ना, अनुभव सुनाते हैं। जब हम उनको पूछते, आप बाबा को याद करते हो निरंतर, अभ्यास बढ़ता जा रहा है? अरे दीदी बात मत पूछो। मैंने कहा बात पूछूंगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा, इसीलिए पूछना तो पड़ेगा ही मुझे, इसीलिए आपको बताना पड़ेगा कि आप कैसे बाबा को याद करते हो। तो बोला अच्छा पता है मैं क्या करती हूँ? मैंने कहा फिर बोला पता है? पता तो देगी तो मुझे मिलेगा ना पता, ऐसे कैसे मालूम पड़ेगा? बोला क्या है, मैं जब कपड़े धोती हूँ ना, सुबह सुबह पहले तो अमृत वेले बाबा को याद करती हूँ, स्नान करती हूँ तब भी बाबा की पॉइंट्स याद आती है, अशरीरी आए अशरीरी जाना है, सब ये मुझे बातें याद आती है। बहुत अच्छी बात, कितनी अच्छी बात सुनाई। सुनो फिर आगे, फिर मैं मेरा थोड़ा खाना पीना जो भी करना होता है करती हूँ, फिर कपड़ा धोना, खाते समय भी बाबा को याद करने का याद करती हूँ, क्योंकि बाबा कहता है घर में भी भोजन बनाते हो तो क्या समझ के बनाओ, ब्रह्मा भोजन समझ के बनाओ, तो मैं ब्रह्मा भोजन बनाती हूँ। तो फिर मैं आटा जब भी गूंदती हूँ ना रोटी के लिए या पराठे के लिए, तो आटा गूंदती जाती हूँ तो बाबा कहता है ना कि मनन करो, चिंतन करो अच्छी तरह से, तो वो जो मैं जो पॉइंट याद आती है ना, तो मैं अच्छी तरह से आटे को गूंदती हूँ। फिर मैं उसके पेड़े बनाती हूँ रोटी बनाने के लिए, तो पेड़े ऐसे ऐसे गोल गोल बनाते हैं ना, माताएं ज्यादा अनुभवी है तो गोल गोल पेड़े बनाती हूँ। तो फिर मैं अंदर में कहती हूँ बाबा गोल मैं गोल, बाबा गोल बाबा ड्रामा गोल मैं गोल ड्रामा गोल, ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर मैं रोटी बनाती हूँ तो गुजराती माताएं जो होती है ना उनकी रोटियां बड़ी गोल होती हैं, ऐसे बेलन को घुमाती जाती है और गोल गोल वो ऑटोमेटिकली घूमती जाती है। तो बोला मैं रोटी बनाती हूँ तब भी मैं यही पाठ पक्का करती हूँ कि बाबा गोल मैं गोल, बाबा कहते स्वदर्शन चक्रधारी बनो, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण देवता, ये तो बड़ी अच्छी युक्ति है इसके पास। तो मैंने कहा फिर रोटी सेकती हो तो? बोला रे दीदी बाबा की याद में मस्त हो जाती हूँ ना, मुझे भूल जाता है फिर मेरी रोटी जल जाती है। मैंने कहा तू तो नहीं जलती है ना, बोला हाँ वो भी कभी हाथ लग जाता है। फिर बोला भोजन देने बैठती हूँ कभी मैं गड़बड़ कर डालती हूँ बाबा की याद में। मैंने कहा बाबा की याद में कभी गड़बड़ नहीं होती है। बोला पर मेरे से हो जाती है। मैंने कहा क्या गड़बड़ होती है। बोला क्या है सब बर्नियों में पड़ा होता है ना, नमक भी सफेद, सोडा भी सफेद, चीनी भी सफेद, तो मैं कभी उनके लिए चाय बनाती हूँ, कॉफी बनाती हूँ, दूध बनाती हूँ, तो क्या करती हूँ भूल से शक्कर के बदले नमक, नमक के बदले शक्कर डाल देती हूँ। अब वो बाहर से थके हुए आए एकदम थू थू करके गुस्सा करते हैं। मैं बाबा को कहती हूँ बाबा ये क्या कर दिया। मैंने कहा गलती तुम करती हो, दोष बाबा को देती हो कि बाबा ये क्या कर दिया, ये कोई बात हुई। तो बोला फिर क्या, मैं तो बाबा को याद करती हूँ ना, तो बाबा को मदद करनी चाहिए, क्यों मेरे आगे नमक का बरनी आई, क्यों मैंने वो डाला। मैंने कहा बाबा तू सच्ची भोली माता हो, तभी भोलानाथ बाबा तुम लोगों के लिए प्रसिद्ध हुआ। फिर मैंने मुझे अंदर आया कि अभी इसको थोड़ा कपड़ा धोने का भी पूछूं, उसमें भी नवीनता होगी कुछ। तो मैंने कहा फिर कपड़े कैसे धोती हो। बोला अरे इतने मजे से धोती हूँ बाबा के, जब कपड़े लेके बैठती हूँ ना तो बाबा की याद आती है, बाबा भी तो हमारा कपड़ा धोने आया है, हमें पतित से पावन बनाने आया है, हमारा मैल निकालने आया है। पॉइंट्स बहुत अच्छी अच्छी बताती। फिर बोला जब मैं साबुन लगाती हूँ अभी इतनी मीठी याद आएगी तो गीत भी याद आएंगे नेचुरली, तो फिर मैं गीत भी गाती हूँ। फिर उसके अंदर क्या होता है, मैल आता है ना, कहाँ कहाँ कॉलर में जैसे भाइयों के कपड़े या कहीं हर स्पेशल उसको हमें घसना भी पड़ता है, तो फिर जब वो घिसने की बात आती ना तो जरा जोर लगाना पड़ता है ना, या तो साबुन को जोर जोर से ऐसे करना पड़ता है। तो वो गीत गाते गाते मेरे प्यारे प्यारे बाबा, मेरे न्यारे न्यारे बाबा, उनका ये अच्छा तरीका है। मैंने कहा ये तो तुम बहुत अच्छा करती हो, मैं भी अभी कपड़े कभी नहीं धोऊंगी, मुझे तुम्हारी बात आएगी मैं तो कितनी हर्षित मुख हो जाऊंगी। ऐसी कितनी वैरायटी बातें हमारे भाई बहने हमें सुनाते हैं। एक भाई हमें कहता है कि बाबा कहते हैं ना बाबा की याद में चलो उठो बैठो खाओ पियो, तुम्ही संग खाऊं तुम्ही संग बैठूं तुम्ही संग चलूं। तो बोला मैं तो बस बाबा की याद में, बाबा कहता है ना बस तुम्ही संग, तो मुझे तो क्या मुरली का बस होता है, तो मैं मुरली लेके ही महसूस करता हूँ बाबा मेरे संग है मेरे अंग है। फिर मुरली पढ़ते पढ़ते मैं चलता हूँ, अरे मुरली पढ़ते पढ़ते चलता हूँ। मैंने कहा रास्ते में, बोला रास्ते में भी क्या हो जाता है एक्सीडेंट। बोला कहीं कभी कार से टकराता हूँ कभी कोई भाई से टकराता हूँ। मैंने कहा पर ये तो बाबा ने डायरेक्शन दिया ही नहीं है कि रास्ते में ऐसे मुरली पढ़ते पढ़ते जाऊं। बोला बाबा अभी कहते ना कि सबको दृष्टि दो सकाश दो, तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं चलता हूँ ना तो सबको ऐसे सकाश देता जाता हूँ। अरे सकाश देता है लेकिन दूसरे को तू जेल पहुंचा देगा, ऐसा कैसा सकाश देना तेरा, वो क्या सोचेंगे। बोला मैं कोई दुकान में जाता हूँ बहुत अशांति होती है, मैं खड़ा हो जाता हूँ, वहां खरीदी करने के लिए जाता है खड़ा हो जाता है, सारी दुकान को सकाश देता हूँ, जो भी खड़े हैं उनको सकाश देता हूँ, शोरगुल कम हो जाए शांति हो जाए। दुकान वाला पूछता है भाई, ओ भाई
जो सुनता नहीं ना।
आप क्या कर रहे हो? बोला नहीं कुछ नहीं। बोला आपको क्या चाहिए? थोड़ा तो उस नशे में होता है उस समय। तो बाबा के बच्चे देखो कितने भोले हैं। मैं देखती हूँ कि बाबा डायरेक्शन क्या देता है और भोलेपन में वो उठाते क्या हैं। ऐसी कई बातें हैं छोटी छोटी जो हम जब भी सुनती हूँ तो मुझे सचमुच बाबा पर बड़ा प्यार आता है। बाबा पे रहम तो नहीं खा सकते, ऐसे बच्चों को पाके हैं भगवान का भाग्य है या दुर्भाग्य, लेकिन बाबा को बड़ा प्यार आता है ऐसी बच्चियों पर और ऐसे बच्चों पर। इसीलिए ऐसा करना नहीं, क्योंकि आप कहेंगे नलिनी दीदी ने बोला जो ऐसा करते उस पर बाबा को बड़ा प्यार आता है, इसीलिए जाके शुरू कर दो।
ना
तो वाह मेरा आवा वारे मैं वारे मेरा भाग्य। अब एक एक्सरसाइज करते स्मृति की जब तक हमारी आशा बहन पहुंचे। सभी ध्यान से एकदम अलर्ट रहना, आपको विजयी बनने का है। बैठे बैठे मैं आपको कुछ पूछूंगी जिसका जवाब आपको देना है मेरा बाबा, ठीक है? हर बात का जवाब देना है मेरा बाबा। आपको कौन मिला? आप किसके हो? सुख कौन देता है? ज्ञान कौन देता? अभी मैं स्पीड बढ़ाऊंगी, आपको भी मेरी स्पीड के साथ आगे बढ़ना है। अच्छा, ज्ञान कौन देता? सुख कौन देता? शांति कौन देता? आनंद कौन देता? प्रेम कौन देता? सुख कौन देता? शांति कौन देता? दुख कौन देता? अरे वाह, आप तो पहली बार में पास हो गए। देखो इसको कहते हैं अलर्ट रहना। इसका मतलब क्या हुआ? हम अलर्ट रह सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम अलर्ट रह सकते हैं। तो जो क्लास में एकाग्रता से नहीं बैठते, जो क्लास में सुस्ती में बैठते, आलस्य में बैठते, नींद करते, पॉइंट्स याद नहीं रहती, लिखते नहीं, ये सब यदि वो न चाहें तो नहीं होगा। इसीलिए चाहना ही हम बहुत अच्छी अच्छी अपने लिए भी रखें, अपने लिए खुद के लिए भी हम शुभ चिंतक बने। दूसरों के लिए बनना तो बड़ा सहज हो जाता है, लेकिन खुद के लिए भी तो बने। तो खुद के लिए शुभ चिंतक बने, खुद के लिए शुभ भावना रखें। इसीलिए खूब खूब अपने से बातें करते रहो बाबा के साथ, अपनी बात बाबा के साथ कंटिन्यू करते रहो। उठो तो भी बाबा, बैठो तो भी बाबा। इसका मतलब ये नहीं ऐसा हाथ देके उठे या कुर्सी से थक के उठे, हे बाबा, ये कोई खुशी का कोई थोड़ा हुआ बाबा की याद। बैठेंगे तो भी, हे बाबा, ये तो निराशा का सुर है। ये खुशी के साथ उठे, वाह मेरे बाबा वाह, शुक्रिया मेरा बाबा शुक्रिया। बोलना ही है ना, कुछ दिल से कोई आवाज ही निकालनी है ना, तो क्यों नहीं हम ऐसी आवाजें निकालें। जब भी बॉम्बे में आजकल फैशन क्या है, एक दो को मिलते हैं तो क्या बोलेंगे? हाय। अरे ये हाय है क्या करना होता है? हाय है कौन करता है? तो ये जो पहले के जमाने में सब मिलते थे तो क्या करते थे? राम राम, जय जय, ऐसे बोलते थे। तो भावनाएं शुद्ध थी, शुभ थी। और अभी तो जमाना ही हाय हाय करने का, तो हाय हाय ही करते हैं। लोगों के घरों में फैशन में मॉडर्न जमाने के लोग क्या करते हैं, फ्लावर्स को सजा के रखने के बजाय कैक्टस, वैरायटी कांटे आते ना, कैक्टस रखते हैं, क्योंकि दुनिया ही कांटों का जंगल, घर कांटों का घर बना दिया, तो घर में उनको वही पसंद आता है। मम्मी पापा को क्या बोलेंगे, डैडी डैड, अरे जिंदा को मारते क्यों हो, डैड। मम्मी को बोलेंगे मम्मी, मोम। मम्मी किसको बोलते हैं, इजिप्त के अंदर पिरामिड होते हैं ना, जो मरे हुओं को डांट के दवाइयां डाल के रखते हैं जिसको, वो होती है मम्मी। तो मम्मी को भी मार डालते हैं, डैड को भी मार डालते हैं। तो इसीलिए हाँ, ये सब बातें बाबा ने हमें सही सिखाई सब, तो हमें बाबा को याद करना है। कैसे याद करेंगे, यहाँ से याद करना है, यहाँ से याद करना है। ओके, ओम शांति।
ओम शांति। दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे।
देखो आशा दीदी आ गई,
जो आप काफी अपना कीमती समय निकाल के हम सबके लिए आए। तो कैसे बाबा को याद करना है, सहज से सहज तरीका क्या है, कैसे हम उसको इजी बनाएं, तो दीदी ने बहुत अच्छी तरीका बताया, कैसे रोटी बनाते हुए, कपड़े धोते हुए, हर कार्य करते कैसे बाबा को याद करें।